All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. Today is Jhulan Festival. Lectured by Srila Narayan Goswami Maharaj at Keshavji Gauriya Math on 5887.
के लिए कौन सा साधन और कौन सा साधन आपके लिए है, ये स्वयं चुन लीजिए। निखिल परमानंद पुराण तस्म गंभीर अवधव जननी गमनम साध सब प्रयास जनस्तस्मिंस्ता विविध रतयस्ते ननाथी न साधन यात्रा मात्रम मधुर मधुरा संततम। कुछ नहीं बोली, आप बोलना आरंभ है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, आपने सब कुछ सुना और उसने स्वयं आप निर्णय कर लीजिए आपको क्या करना होगा। फिर समस्त जितने प्रकार के साध्य और साधन कृष्ण ने बतलाए परम पूज्य गुह्यतम सर्व गुह्यतम गुह्य गुह्यतर गुह्यतम सर्व गुह्यतम मनमना भव इत्यादि इसको सुना। ऐसे ये भी देखा कि भैया तो चुप रही है, जो आनंद का गंभीर समुद्र है वही गोलोकधाम। कृपया उसी गोलोकधाम में जाने के लिए प्रयास करें, चेष्टा करें, इससे बढ़कर क्या और कुछ नहीं। मात्र से अपने जो नाथ हैं वचन ये जो वचनों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, ऐसी नित्य नई नव नवायमान माधुरी और उनकी क्रीड़ा का आस्वादन साधारण रूप में ये पता नहीं चलता चारों में से किसके लिए बतला रहे सख और बात्सल्य ये पता नहीं चलता साधारण रूप, इसलिए टीका के रूप में उन्होंने बतलाया। इन्होंने जो राधा जी जिस प्रकार से सेवा करती हैं कृष्ण करती हैं, विशेष करके राधा जी के संबंध में और गोपियों के गोपियों का महात्म्य वर्णन सुनकर के बड़ी आनंदित थी, इसलिए इन्होंने विचार करके दिखलाया कि उनको राधा जी की ही दास्य की इच्छा, राधा जी की दासी बन जाऊं जीवन सफल। ये तो हुआ साध्य राधा जी की दासी। भगवान के अहित की भगवान की अहित की कृपा से ही सर्वसिद्धि होती है। फिर साधन के लिए आग्रह क्यों, साधन करने की जरूरत क्या है, साधन करने की भगवान की कृपा से ही या भक्तों की कृपा से ही सब कुछ हो जाता है, तो ये करने की क्या जरूरत है, उसके लिए बतला रहे हैं। भगवान की कृपा सर्वत्र है, सब पर है, सब जगह है, भगवान की पूर्ण रूप से है, किंतु कृपा को ग्रहण करने की तो जरूरत है, कृपा को ग्रहण या धारण करने की योग्यता होनी चाहिए। अर्थात श्रद्धा और अत्यंत आसक्ति का प्रयोजन है। भगवान की कृपा सर्वत्र और सब जगह है, किंतु उसको ग्रहण कैसे किया जाए, इसलिए अपने कुछ श्रम की भी जरूरत है, साधन की भी जरूरत है। इसलिए भगवान की कृपा से ही या संतों की कृपा से ही हो जाएगा प्रेम, जैसे कि इसमें बतलाया बैठे रहेंगे और साधन साधन करने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठे रहेंगे, जब भगवान की कृपा होगी तब साधन हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे, कभी ऐसा नहीं। यशोदा जी कृष्ण को बांध रही हैं और रस्सी दो अंगुल कम पड़ रही है, तेरे से बांधना आरंभ किया शाम तक बांधते रह गई, दो बार तक नहीं बांध सकी, रस्सी जोड़ती चली जाती है और कृष्ण की कमर जैसे की तैसे रहती है, न बढ़ती है न घटती है और रस्सी बढ़ती चली चली जा रही है। एक रस्सी से दो अंगुल कम था, उसमें उसका डबल रस्सी जोड़ा तो भी दो अंगुल कम ही पड़ गए, एक बार भी वो पूरा नहीं हुआ, तीसरी रस्सी जोड़ी फिर वही का वही, ऐसे लाखों रस्सियां जोड़ी गई, गोकुल की सब रस्सियां लंबी पूरी हो गई 10-20 माइल, किंतु कृष्ण की कमर जितनी की तितनी और किंतु एक बार भी लपेटा नहीं आया, दो अंगुल कम पड़ा। लोग आश्चर्यचकित हो गए, यशोदा मैया के आंखों में आंसू आ गए, गोपियां इसे बांध नहीं सकती, संभव करने ब्रह्मा ने इसके ललाट में बंधन नहीं लिखा, कैसे बंधेगा, उन्होंने कहा कि हमारा लड़का ही तो है, हमारे गर्भ से निकला है, मैं इसे बांध करके ही छोड़ूंगी, चाहे एक वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष लग, बिना खाए पिए बांधू, चाहे रात भले बिना बांधे नहीं छोड़ूंगा। राम की कबरी में वो भी गिर गए, पश्चिम को 3 दिन होकर के पुकारा, मेरी लज्जा नहीं रही, आप कृपा करें, तब कृपया शीत स्वंदने यशोदा जी का श्रम देख करके भगवान को दया आ गई और झट उपलब्ध। भगवान की जितनी भी शक्तियां उसमें कृपा शक्ति सबसे श्रेष्ठ है। जितनी भी भगवान की शक्तियां हैं सब शक्तियों में वो श्रेष्ठ है। नहीं मिलती, लाख वर्ष तक साधन यदि कोई करे तभी नहीं मिल सकती, वो कैसे मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत दीनहीन होकर के आसक्ति के साथ और बड़ी व्यग्रता के साथ व्याकुल होकर के कब मिलेंगे कब मिलेंगे, और मछली जैसी तड़फड़ाता है जैसे पानी के बिना मछली प्राण छोड़ दे, जैसे कृष्ण के विरह में मन प्राण अब निकल रहे हैं तब निकल रहे हैं, ठीक ठीक ऐसा हो जाएगा तो भगवान द्रवित हो जाते हैं उनकी कृपा शक्ति झट इसके पहले। इसलिए कोटि जन्म में यदि करे श्रवण कीर्तन, कोटि कोटि जन्म तक श्रवण कीर्तन साधन भजन कोई करे किंतु चित्त में व्याकुलता नहीं आई, चित्त द्रवित नहीं हुआ, भगवान के लिए कोई व्याकुलता नहीं आई तो वो नहीं है। जैसे रामा जी व्याकुल हो गई, आंखों में आंसू हो गए, दबदबाया और रोने लग गए और अत्यंत दिन होकर के प्रभु से कहा, प्रभु आप क्या इस बच्चे को मैं नहीं बांध सकती। बस जहाँ व्याकुल है बस झट भगवान की कृपा। ऐसे ही वो विचार हैं रामानुज आचार्य जी हो गए, उनके शिष्य लोगों को दो भागों में बांटा जाता है, एक पड़गलई एक टाइम गलई, न्याय और एक मार्जार न्याय, भावधारा को लेने वाले और एक बंदर जैसा भावधारा लेने वाले। बंदर क्या करता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा जाए, अपना उनका बच्चा आया और झट उसको पकड़ लिया, ये मैया आप छलांग देगी, झट वो बच्चा आकर के कूद करके उसके पेटी में या वहाँ ऊपर में पकड़ लेगा अपने आप, हाथों से पर ऐसे जोर से पकड़े के लगी रहे और छलांग लगाया उसकी मैया ने और उस पार चला गया। मैया नहीं पकड़ेगी, आज यदि वो बच्चा गिर गया तो उस बच्चे को फिर उठाएगी नहीं, जाति से बाहर कर देगी। उनमें बड़ा नियम है कठोर, यदि बच्चा गिर गया छोटा कभी बच्चे को छुएगी नहीं, चाहे मर जाए तो मर जाए, तो बच्चा उसमें पकड़ता है और माँ उछलती है कूदती है चलती है, कुछ नहीं करेगी। और एक तरफ है बिल्ली का बच्चा, बिल्ली को बच्चा होता है वो आंख बंद करके म्याऊं म्याऊं करता रहता है, ऊं ऊं करता रहे, अपने आप हिलेगा डुलेगा नहीं, न खाएगा न पिएगा, उसे दांतों से पकड़ करके और वो म्याऊं म्याऊं करेगा, बिल्ली अपने बच्चे को दांत से पकड़ करके मुख में और यहाँ से वहां ले जाएगी वहां ले जाएगी, वो चलेगा भी नहीं। तो जैसे मार्जार न्याय, मार्जार में बिल्ली, कुछ साधकों का ऐसा ख्याल है कि हम कुछ करेंगे नहीं, जब भगवान की इच्छा होगी हम तो शरणागत हो जाएंगे और भगवान इच्छा होगी तो कृपा करें और न करें, उनके अधीन पर मैं नहीं छोड़ के साधक ऐसे बस शरणागत होकर के बस छोड़, भगवान की जब इच्छा हो तब कृपा करें, एक तो ऐसा। और दूसरे हैं मैं चेष्टा करूंगा, जैसे बंदर का बच्चा माँ को पकड़ लेता है उसे माँ रूपी भगवान को हम पकड़ेंगे, ज्ञानी साधन भजन सब कुछ करेंगे, भगवान कैसे नहीं कृपा करेंगे, जरूर करेंगे, कर्म का तो फल देना ही पड़ेगा उनको, तो जरूर देंगे निश्चित देंगे। उन लोग जब चैतन्य महाप्रभु जी दक्षिण प्रदेश में गए तो दो दल हो गया, कुछ विवाद होने लग गया था जो कैसा साधन हो, बिल्ली की तरफ में साधन हो अथवा मर्तक की तरफ बंदर की तरफ में साधन हम करें भगवान ही नहीं, अथवा हम शरणागत होकर के छोड़ दें और बाकी सब भगवान कर लेंगे। भगवान की कृपा सर्वत्र है ये बात ठीक है, किंतु जब तक हम साधन नहीं करेंगे तब तक भगवान की कृपा हमारे ऊपर में ग्रहण करने की शक्ति हमें नहीं है। हमारा कष्ट देख करके, जब यशोदा जी का कष्ट देखा तो क्या हुआ, भिन्न मंगल जी से दक्षिण देश में रूपवती कुलवती आज्ञा पालन करने वाली अपनी सती साध्वी स्त्री थी, उसे उनका मन नहीं मिला। पिताजी मर गए, श्राद्ध हो रहा है, ब्राह्मण लोग जेवनी के लिए घर में पधारे हुए हैं, सब चीज बना हुआ है, अब उनको खिलाना है। खूब जोर से मूसलाधार वर्षा हो रही है, नदी में बाढ़ आ गई है और शीतकाल का दिन, किसी चीज को खाने का जो सामान बिना बना था वो सब को अपनी गठरी बांध दिया गमछे में साथी में और चल पड़े उसे मिलने के लिए। नदी पार करके उधर चला, होते होते पहुंचे, दीवार को टपक करके नीचे में आए, रस्सी कोई झुकती ही उसको पकड़ करके कूद गए तो बेहोश हो गए, ठंड लग गई, वर्षा से भीज गए, ऊपर से गिरे, चोट भी आई। बेशिया ने अपनी नौकरानी से कहा, भाई क्या ये धमाका हुआ, देखो तो, अरे ये तो बिंद मंगल, ये कैसे आ गया इस समय, कैसे चले आए इस समय में, नदी को पार कर गया, कैसे पार कर गए, एक लकड़ी पर चढ़कर, और इस घर में कैसे आए, चारों तरफ से दरवाजा बंद, बहुत ऊंची चार दीवारी, तो कोई रस्सी झूल रही तो पकड़ करके चढ़ गया, जब चढ़ गया तो वहां से गिर गया, उतरने का कोई रास्ता नहीं। तो देखें कहां रस्सी झूल रही है, तो बाहर आकर तक वर्षा बंद, बाहर आकर के देखा क्या, सांप काला नाग मोटा सांप, सांप को आपने देखा नहीं है, रस्सी देखा आपने, हमें तो उस समय दिखाई नहीं पड़ा था, हमें समझ रहा था कि यह रस्सी उसको चढ़कर के ऊपर नीचे, नदी को कैसे पार किया, गए वहां देखा ये लकड़ी को पार पकड़ कर तो उस पर चढ़ करके आया, वो लकड़ी नहीं वो क्या था, कितना दिनों का सड़ा गला हुआ मुर्दा था, कीड़े पड़ रहे थे, दुर्गंध आ रही थी और उस पर लकड़ी समझ करके उनको दुर्गंध भी नहीं आई, के एक वासना में प्रेम ने, प्रेम नहीं बल्कि काम में, ममता में, मोह में, यदि सांप नहीं मालूम पड़ता है और लकड़ी और मुर्दे शरीर में कोई फर्क चिंतन नहीं आता है, माता पिता के प्रति कर्तव्य और स्त्री के प्रति कर्तव्य को सबको कुछ भूल करके माया मोह में वहां पर पहुंच जाता है, कैसी ये विडंबना है। उसने कहा, जब हमारे रक्तमांस और हाड़ के पैखाना पेशाब से भरे हुए शरीर में तुम्हारी जितनी मोह है, आज प्रभु ने तुम्हारा यदि उसका हजार भाग का एक भाग भी तुमको प्रेम हो जाता था, तुम्हारा कल्याण हो जाता, तो मुर्दे में सड़े हुए मुर्दे में और लकड़ी में फेंक दी, इसमें सांप और रस्सी में फेंक दी, ऐसा तुमको भगवान के लिए यदि सब कुछ भूल जाओ, संसार माता पिता भाई बंधु घर द्वार सब कुछ भूल जाओ, तब तो हम समझे है क्या, यदि ये शरीर का चमड़ा निकाल दिया जाए कोई स्नेह करेगा, कुछ का चमड़ा थोड़ा सा उठा लिया जाए, टट्टी पैखान पेशाब ये सब खड़े कर, इस शरीर के लिए इतना तुम्हारा मोह, तुमको धिक्कार है, ऐसे दो चार बार खा और बस अब नहीं रहना, बस पूर्व जन्म की कुछ सुकृति थी, भगवान से कहाँ जाएंगे, पहले वो गान उन गाती थी ना तो वृंदावन की बड़ी सुंदर सुंदर संगीत, राधा कृष्ण की बड़ी भाव वाली प्रेम वाली गान उनको गाती थी, कुछ भक्त भी थी, इसलिए उसके संग से कुछ राधा कृष्ण के प्रति उसकी कुछ रुचि हो गई थी, बस झटका लगा और बस चल पड़े, रास्ते में फिर अटक गए, जा रहे थे वृंदावन, फिर अटक गए, कुएं पर स्त्रियां पानी भर रही थी, उनको प्यास लगी, पानी पीने के लिए गए, पानी पीते देखते देखते नवज्योति स्त्री के पति फिर आंखें लग गई, क्या पिएंगे, उसके घर पे पीछे पीछे चल पड़े, घर में जाकर के जब पहुंचे तो तब तक दाढ़ी और ये सब कुछ बढ़ गई होंगी। अरे महात्मा जी, यहाँ पर क्या आपकी सेवा करूँ, उसके पति ने पूछा। और तो घर में चली गई, उन्होंने बिना किसी हिचक के कहा, जिसमें वो जो घर में महिला गई है उसको जरा देखना चाहता हूँ, उसे बातचीत करना चाहता हूँ। ठीक, बच गया और उसको बुला लाया। ये देवी वो पूरा बचने के लिए कांटे होते हैं, जरा दे देना तो दो। उसने सोचा जी कोई जरूरत होगी, ले लिया और बस देखते देखते ही आंखों में चुभा दिया। न रहेगा बांस, बजेगी बांसुरी। ये आंखें ही सब सर्वनाश का कारण, ये आसक्ति लगा देती है। जहाँ चला था वृंदावन में, कहाँ चला गया नरक में। इसने आंख की जरूरत नहीं, वहां से चला, आंख भी नहीं, रास्ता बिहड़, कहाँ से चला रहा था। चल रहा है दक्षिण प्रदेश से, अब वो मद्रास के नीचे, मैंने कहा रंगनाथ जी का जहाँ मंदिर है उसके आसपास में वो ताम्रकर्णी या कौन नदी थी, वहां से चला। रास्ता कैसा बिगड़, कितने दिन पहले की बात, हम समझते कि 5,000 वर्ष की पहले, 5,000 1,000-1,500 वर्ष पहले। नाले हैं, वन जंगल है, जाने कितनी प्रलालसा। चल पड़ा डंडा के सहारे, रास्ता नहीं मिल रहा तो भी चल रहा है। उसका यह कष्ट देख करके भगवान को दया, भगवान के लिए जा रहा है, कहाँ जाएगा, कह किस लिए जा रहा, श्याम सुंदर से मिलने के लिए जा रहा नहीं है, दुख कष्ट है, खाना नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं, जाएंगे जरूर, चाहे मर जाएंगे, मर जाएंगे, जाएंगे। ये जो मरने का जो ये दृढ़ प्रतिज्ञा जो है भगवान के लिए, सब छोड़ छाड़ करके संसार भूल गया, अब भगवान को हृदय पसीज गया और चट वहां पर प्रकट हो गया। पास में बाबा, अंधा बाबा कहाँ जाएगा, तो मैं वृंदावन जा रहा हूँ, मैं भी वृंदावन चलूंगा, तुम भी चलोगे तो हम भी चलेंगे, दोनों साथ साथ चल रहे। हाँ बाबा जी, मुझ भी अच्छा हो गया, संग हो गए, बस उनका डंडा पकड़ लिया, पता ही नहीं जैसे कौन है, वो समझता है जैसे छोटे सा कोई बच्चा है और उनको लेकर के चला गया। के बाद ही कहे बाबा वृंदावन आ गया, तो इतने जल्दी वृंदावन कैसे आ गए, तो वो आई तो गया, यही तो वृंदावन है, यही तो गोविंद कुंड है, बस गोविंद कुंड तक पहुंचा दिया। गोविंद कुंड है गोवर्धन की परिक्रमा, वहां पर पहुंचा दिया, जहाँ पर की वो
इंद्र ने अभिषेक किया था,
जो वो गोपाल जी जहाँ से प्रकट हुए बाद में। जो नाथक द्वार में है श्रीनाथ जी, बस वहां पर पहुंचा दिया, पहुंचा करके वहां पर कहा बाबा वृंदावन में आ गया, तो मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, वो कुछ बातचीत करी थी ना, वो कहाँ चला गया, अब खोज नहीं पाए तो कोई उत्तर नहीं, खाएंगे नहीं, अब मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, चिंता बनना चिंता उसमें कहाँ जाऊँ, खाया भी नहीं कितनी, शाम को वही लड़का फिर आता है, अब दूसरे देश पूछा बाबा, अरे तू भूखा है, ब्रज में कोई भूखा नहीं रहता, तुम कुछ खा लो, मेरी मैया ने तेरे लिए दूध भेजा है, तुमको देख गई मेरे के पर जा रही थी खेत में, अब तो तुम्हारे लिए ये दूध उसने भेज दिया, मैं दूध ले आया हूँ, मैं खाऊंगा नहीं, तो मुझे मैया मारेगी डांटेगी, और मैं दे जाऊँ जल्दी से पी लेना, और मैं उधर से आऊंगा तो लेते जाऊंगा घर, इनके लिए भी ऐसा दे दिया। जब पिया उसका रसास्वादन किया, इतना मधुर, इतना सुगंध, अब तो बड़े गृह में रोने लगे, अब तो प्राण नहीं रखेंगे बिना उनके दर्शन। जब छटपट 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 करने लगे तो देखा बड़ी मधुर वाणी से स्त्री और एक पुरुष की आवाज उनको सुनाई चाहिए धीरे धीरे। महिला कहे बाबा परी जैसे मैं तो ये इसके पास जाऊंगी, देखिए क्या करता है, और वो कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण थे, आगे मत बढ़ना नहीं तो पकड़ लेगा और छोड़ेगा, देखा जिसे इतनी मधुर वाणी ये बोले वो राधा कृष्ण का तृप्त हो गए ये दर्शन देने के लिए मुझे आ रहे हो गया कभी आगमत जाने में तो लपक करके पकड़ लेगा मैंने कृष्ण कह रहे हैं जिसे तुम लपक करके पकड़ लेना मैंने कृष्ण उसको इंगित दे रहे हैं कैसे ये मिलेंगे इसलिए वो एकदम तैयार हो गया और राधे क्या ये पकड़े गांव का देखो हम जाती हैं कैसे पकड़ लेगा जब पकड़ने आएगा तो भाग जाऊंगी अच्छा तू भाग जाएगी तो देखेंगे हम कैसे भाग जाएगी खबरदार तुम मत जाओ अच्छा तो हम तो देखते हैं हम तो जाते पर धीरे धीरे और थोड़ा सा पहुंच जाते लपक करते दोनों हाथों से पैर करने के लिए आए हैं उसकी व्याकुलता देख करके तो कहते अच्छा अब तो छोड़ो अब तो हो गया ना तो नहीं हमारी आंखों को ठीक कर दीजिए मैं आंखों से देख सकूं आप छोड़ देगा तो हाँ छोड़ दे बस कर कमल रखा उसके सिर पर आंखें जैसे कि तैसे एकदम ठीक हो गई और दर्शन करके मुक्त हो गए जिन आंखों से आपको देखा जिन कानों से आपकी वाणी श्रवण किया जिनके हाथों से मैंने दूध पिया अब इन आंखों से जगत को मैं नहीं देखना चाहता अब अंतर में ही हमारी आपकी वही मूर्ति दोनों की हमारे अंदर में बस जाए और उसी को भी मैं बस श्रीमती राधिका जी ने जैसा कहा तैसा कर दिया और फिर दोनों अंतर ध्यान की हमारे अंदर में ऐसी भावना व्याकुलता भगवान के लिए नहीं तब तो भगवान दर्शन देने आए हम लोग कभी व्याकुलता नहीं है बच्चे के प्रति पति के प्रति घर के प्रति रुपये की नोट के प्रति जैसी आसक्ति है व्याकुलता है ऐसे भगवान के बिना भगवान का तो काम हमारा चल रहा है क्या जरूरत है खाना पीना सब चल ही रहा है इसलिए भगवान का भी दर्शन नहीं होगा लाख जन्म में भी नहीं होगा इस साधन के द्वारा तो नहीं होगा जैसा हम लोग कर रहे हैं एक तो साधन ही कुछ नहीं कर रहे और कर भी रहे हैं तो भगवान को वशीभूत करके उनकी करुणा शक्ति को जागृत कर देने के लिए मुझे वो उतना नहीं है काफी नहीं है इसलिए कहते हैं ये कि भैया कि भगवान की कृपा या गुरुओं की प्राप्ति कैसे होती है एक तो भगवान की कृपा से होती है ये बात तो ठीक है किंतु वो कृपा कैसे होगी कुछ साधन चाहिए साधन की क्लिष्टता होनी चाहिए एकादशी किस लिए है एक आदमी एकादशी कब किया एकादशी में सवेरे ही चाय पी लिया इसके बाद में दूध लिया इसके बाद में संतरे का रस ले लिया थोड़ी देर के बाद में कट्टू की रोटी और आलू का दम और राबड़ी मंगा लिया कुछ आमरस बनाया और दिन में 2 रुपया खर्च होता है तो आज एकादशी के दिन में 15-20 रुपया खर्च और खूब खाया पिया आराम के साथ में तो इसको देख करके भगवान की कृपा होगी
नहीं
और एक आदमी आज कुछ नहीं किया छटपट कर रहा है पानी के लिए आज पानी नहीं खाए आज मैं कुछ लूंगा नहीं हमारे लिए आज इसने कुछ नहीं खाया इतना कष्ट किया तो उसके लिए द्रवित होंगे ना कि 10 बार 15 बार खाया और सोया आराम के साथ में नाक बज रहा है इसके लिए कृपा भगवान की कृपा तो सब पर है ये बात ठीक है किंतु साधन में जिसका कष्ट अधिक है उसके लिए जो चीज छोड़ी नहीं आपके अपनी पत्नी का प्यार छोड़ दिया झगड़ा लड़ाई की वजह से नहीं मूड मूड़े भय सन्यासी ऐसा नहीं जो घर के स्त्रियों ने उसे मारपीट करके निकाल दिया क्योंकि स्त्री का पालन पोषण नहीं कर सकता था लोगों से लड़ाई झगड़ा इसलिए निकाल दिया जमीन बिक गई और तब चले आए, ऐसा साधु सबके रहते हुए भी भगवान का दर्शन के लिए, उनके पाने के लिए इतना हृदय में भाव आया, अपने आप सब कुछ छूट गया, छोड़कर के जिंदा बन गया। दिन रात उसे समय नहीं है, भगवान का ये रोता है, तड़पता है, यही उसका भजन। माथुर कहीं थोड़ा सा ले लिया, किसी न घर है न बार है न कुछ है, पेड़ों के नीचे रहता है, कपड़ा मिल गया तो मिल गया, नहीं तो जहाँ पर श्मशान भूमि में कपड़े पड़े रहते हैं सब को दिए उठा लिया, धू करके वही पहन लिया, लंगूट मात्र पहन लिया, पानी पीने के लिए कोई लोटा इत्यादि नहीं है, ऐसे अंजलि करते आसक्ति साधन में, आसक्ति तन्मयता, और इधर में वैराग्य हो गया अपने आप। जैसे मीरा बाई घर में खाती हैं, रसोई बनता है, दिन रात तो तन्मय है, उनके खाने के लिए आ रहा है तो सांप का विष आ रहा है, बोला जैसे इसमें सालोग्राम है, घर में उनके प्रति कैसा व्यवहार होता था, भगवान ने देखा कि हमारे लिए सब कुछ सह रही है, साधन से उदासीन रहेंगे क्यों, घर बार छोड़ना या लाल कपड़ा पहनना या तिलक माला लेना या घर में ही माला ले लिया, दीक्षा ले लिया, खूब आराम के साथ में घर में है या बाहर में है, भगवान राही नहीं है, उनकी व्याकुलता भगवान साधन के लिए रहेगी, और संसार से वैसे परम विरक्ति भी रहेगी, समस्त शक्तियों में भगवान तो सर्वशक्तिमान है किंतु समस्त शक्तियों में कृपा शक्ति सबसे श्रेष्ठ है, इस कृपा के कारण ही भगवान जगत में अवतार लेते हैं, कृष्ण के रूप में अवतार लेते, किसी पर कृपा करते हैं किस लिए, कृपा शक्ति के द्वारा ही द्रवित होकर के करते हैं, कपड़े नहीं पहनते, जूता और छाता नहीं लेते, अच्छे माल नहीं खाते, किसी का लड़का मर जाए या घर से निकल जाए उसकी मैया खूब अच्छी तरह से खाएगी तो पलंग पर सोएगी, दिन रात तो उसके लिए तो चिंता करेगी, ठीक ऐसे ही उसकी अवस्था है, भगवान के गृह में सब समय तड़पते हैं, उनको खाने पीने की सुख, कपड़े धारण की सुख, ये सब घड़ी बांधने की, सोने का कोई चेन पहनने की, ये सब उनको सुख, भगवान के लिए परम उत्कंठा, अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है उत्कंठा, जैसे कल बतलाया था उसके लिए साधारण भक्त एक रामचंद्र सबरी, साधारण एक भक्त सबरी के लिए कितनी उससे उत्कंठा थी, कितने वर्षों तक प्रतिदिन रास्ता साफ कर रही है, भगवान के लिए नए नए फल रख रही है, आज प्रभु आएंगे, कल नहीं आया, अब आज जरूर आएंगे, अब कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, ऐसे अब आएंगे नहीं तो अब कुछ करेंगे नहीं, चुपचाप बैठ जाएंगे तब तक फिर हो गए, ऐसा तक उपस्थित भगवान अब रह नहीं सकते, भगवान का चित्त द्रवित हो जाता है, कृपा कर देते हैं, कृपा जितने परिवहन होती जाएगी अपने आप बैराग्य हो, आज जान बुझ करके बैराग्य करेंगे ना तो वो प्रतिष्ठा के लिए हो जाएगा, लोग देखेंगे हम कितने बड़े भारी बैरागी, तो उसके द्वारा क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिला, ये मिलेगा संसारिक सुख कुछ मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, बस इतना ही दर्शन, उस बैराग्य से प्रमाण नहीं मिलते, भगवान का श्रवण नाम रूप गुण लीला श्रवण और उसका नाम कीर्तन, श्रवण पहला और दूसरा है नंबर कीर्तन और तीसरा है स्मरण, जब तक आप श्रवण नहीं करेंगे तब तक कीर्तन नहीं कर सकते, और जब तक कीर्तन और श्रवण नहीं करेंगे तब तक स्मरण भगवान का लीला उनका नहीं, ये तीनों चीजें परस्पर ऐसी हैं, जिनका श्रवण कितना पुष्ट होगा उसकी श्रद्धा उतना ही अधिक पुष्ट होगी और उतने रूप में वो सुंदर रूप से कीर्तन करेगा, और उतने में उसका स्मरण होने लग जाएगा। तीनों एक साथ में चलती हैं क्रियाएं। इसके लिए भाई आग्रह होना चाहिए, व्याकुलता होना चाहिए, रो रो करके होना चाहिए, जानबूझ करके रोने जैसा नहीं। सचमुच में कर रहे भगवान के लिए विरह कब मिलेंगे, तड़फन भी बैलो। इसमें एक रहस्य है। क्या रहस्य? जिसमें जितनी दीनता अधिक होगी, दीनता यदि नहीं होगी, उत्कंठा भी नहीं होगी, और भगवान कभी भी द्रवित नहीं होगा। जिसमें जितना अधिक दीनता है ना, उतना ही भगवान की कृपा है। दीनता ही नहीं है तो क्या भगवान की कृपा है? यदि हम किसी चीज के लिए गिड़गिड़ाते नहीं है तो व्यक्ति अपना चीज कैसे देगा हमें? इसलिए दीनता होनी चाहिए। ये दीनता और प्रेम दोनों करीब करीब एक ही चीज है। के लिए ही साधन होना चाहिए। स्वाभाविक दीनता जैसे है, जम एव गणिते तेन लभ्यः, उपनिषद में ऐसा आया है, श्रुतियों में ऐसा आया है, वेदों में ऐसा आया है। लाख साधन करने से भी नैमात्मा प्रवचन ही न लभ्यो। प्रवचन, प्रवचन माने क्या? ये पाठ कर रहे हैं, समस्त वेद उपनिषद शास्त्र पुराण सब कंठस्थ है, कर रहे हैं। उनको एक घंटे में 5,000 रुपया मिलता है प्रवचन करेंगे तो। ऐसे नहीं जाएंगे, इतना सुंदर प्रवचन करते हैं, लाखों लोग उनको श्रवण करने के लिए आ जाएंगे, लाखों आदमी। तीर्थ धरने की जगह नहीं होगी। बड़ा सुरीला कंठ है, बड़ी सुंदर उपमा देते हैं, मधुर बोली है, संगीत में उनका सब शब्द निकलता है, सब लोग आकर्षित हो जाते हैं। किंतु वो लोग तो सुनने आते हैं और ये करते हैं किस लिए? 5,000 रुपया हमको इसमें मिल जाएगा। भगवान ऐसे प्रवचन से मिलेंगे नहीं, ऐसे प्रवचन से भगवान लाख कोटि जन्म तक नहीं मिलेंगे, और ऐसे कीर्तन के द्वारा भी नहीं मिलेंगे। लोगों को रिझा कर नाच गान करके बंदर जैसा, और ऐसे ऐसे कर करके पैसे दे देते हैं, 10 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, और वो 3 घंटा 4 घंटा नाचते हुए होली और कैसे कैसे दुल्हन इत्यादि सब तरह का कीर्तन करता है, लोगों को एकदम मनोरंजन कर देता है, और जाते समय उसे 500-700 रुपये उसे मिलते, वो भी प्रसन्न हो गया, श्रोता भी प्रसन्न हो गया। भगवान मिले कि नहीं उस श्रोता पर अथवा उस वक्ता पर? ये नैम आत्मा प्रवचन ही न लभ्य हो, नमीध या बहु नासुदे। बुद्धि के द्वारा, हजार बुद्धिमान हो, वहां पर भी बुद्धि नहीं जाएगी। अवाम मनुष्य गोचर बुद्धि के पकड़ से अतीत है। इसलिए नमेधया बहुना श्रुते न, खूब सुन रहे हैं अथवा श्रुतियों का अभ्यास कर रहे हैं, वेद पाठ हो रहा है ना, खूब वेद पाठ हो रहा है, ऐसे होगा। जिन्होंने भगवान के चरणों में मेरा कुछ नहीं, मैं भी आपका हूं, और सब पूर्ण से आत्मसमर्पण कर दिया, और भगवान ने देखा जैसे ये बड़ा दीन है, हमारे बिना रह नहीं सकता है, बस ये मेरा, जहां ये मेरा थे उन्होंने ग्रहण किया। जम एव एष दृढ़ते, जम माने भगवान ने जिनको अपना बना दिया, बस उसी पर उनकी कृपा हुई, और उनकी कृपा से सब कुछ हो सकता, और दूसरा कोई भाई उपाय से ही जाने जे देव जना, जिसको प्रभु जना देते हैं वही जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। सर्वन मुखो ही जिह्वा दो स्वयं ए उस तत्व, सर्वमुखी हमारी प्रमुख वृत्ति जब होगी, और वो जब उसके बिना हम रह नहीं सकेंगे, उनके चरणों में संपूर्ण रूप से हम अनकंडीशनली सरेंडर कर देंगे, तब वो कृपा करेंगे। ऐसे नहीं, वो बाध्य नहीं है हमारे, घुसखोर तो है नहीं, उनको प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं, किसी चीज का डर है नहीं, किस लिए करेंगे? परम स्वतंत्र नसीब पर को सब प्रकार से वो है, इसलिए उनको किसी दूसरे उपाय से नहीं जाना जा सकता है। ये कहते हैं कि उनको पाने के लिए एकमात्र है यदि भगवान की कृपा हो जाए, और ये होगी दीनता से। जिसका हृदय जितना ही दीनहीन है, अपने को दिनहीन बना ले, भगवान की कृपा झट उस पर हो जाए, ये एक परम रहस्य की बात है। हंसते हुए खेलते हैं, मनोरंजन करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा में लाख रुपया लेकर के ढाल दिया, सोने का एक करोड़ रुपए का एक डोला बना दिया, डोला हमने क्या कर दिया, कोटि कोटि रुपयों का मंदिर बना दिया, वो प्रसन्न नहीं होंगे, यदि हृदय में उनको झुला सको तब वो, इसलिए वो कहते हैं जैसे भाई कृपा उनको ऐसे मिलेगी, इसलिए दीनता और प्रेम दोनों एक है, इसी के द्वारा ही दीनता के द्वारा ही भगवान प्रसन्न होंगे और उसी के द्वारा उनकी कृपा होगी और उसी के द्वारा भगवान गोलोक वैकुंठ धाम को जाने के लिए जो उपाय हैं, इस भौम वृंदावन में भी कृष्ण को दर्शन करने के लिए वही उपाय है, दोनों में उपाय में कोई अंतर नहीं। क्या कहा, अभी हम जो साधन कर रहे हैं, जो गोलोक वैकुंठ धाम हमको मिल जाए, ब्रजधाम हमको मिल जाए, जो क्लिष्ट साधन है, उन्हीं क्लिष्ट साधनों से अभी भी भगवान इस भौम वृंदावन अभी मिल जाएंगे, जैसे इनको दिखला दिया ना स्वरूप जी अपने शिष्य जन सामाजिक को दिखला दिया, इसी में अभी भी वृंदावन में सब वही लीलाएं चल रही है, मथुरा में भी वही लीलाएं सब चल रही है, जिस दिन हमारे अंदर में दीनता ऐसी आ जाएगी, छटपटाहट आ जाएगी, आसक्ति भगवान के चरणों में ऐसी आ जाएगी, उसी दिन दर्शन कर लेंगे और वहां पर भी जाना हो जाएगा। एक उदाहरण देकर के इस विषय में, एक शास्त्र में ऐसा श्लोक है, मद भक्ता जत्र गायंती तस् प्रतिष्ठामि, क्या अर्थ क्या होगा, नाम बसामि बैकुंठे, मैं बैकुंठ में नहीं रहता, लोग हमको बैकुंठ में सागी नहीं पा सकते, हाँ जोगी नाम हृदय ना चल, योगी लोग के हृदय में भी मैं निवास करता हूँ, मैं कहाँ निवास करता हूँ, मेरे मदगत चित्त भगवत भक्त प्रेम से जहाँ कीर्तन करते हैं मैं वहीं पर रहता हूँ, तो जहाँ कीर्तन होता है भगवान रहते हैं, ये बात ठीक है, तो जहाँ पर हम लोग कीर्तन कर रहे हैं यहाँ पर भगवान होंगे कि नहीं होंगे, समस्या नहीं, त्यागता के साथ में व्याकुलता के साथ में कीर्तन होना चाहिए, श्रद्धा का अंतिम स्टेज तक जब ऐसा होना चाहिए तब उसमें भगवान उतने रूप में आएंगे, साक्षात रूप में नहीं आएंगे, हाँ अभी छिप करके रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर में ऐसी श्रद्धा नहीं है, एकाग्रता नहीं है, व्याकुलता नहीं है, हम तो कीर्तन करते हैं और देखते हैं किधर में लोगों के मुख के तरफ में, वाह लोगों को प्रसन्न कर रहा हूँ, भगवान आएंगे वहाँ नहीं आएंगे, चार लाख आप कीर्तन कीजिए, कीर्तन कैसा होना चाहिए, प्रभु के लिए ही हो, हृदय तन्मय हो जाए नीरज जैसा, आंख बंद हो रही है, आंखों सांसों की झड़ी लग रही है, हृदय कभी पुलकित, होश नहीं है कहाँ हमारा कपड़ा गया, कहाँ मैं हूँ, कहाँ क्या, तब तो आएंगे ना, आखिर जिस रूप में हम लोग कीर्तन कर रहे हैं उसमें आएंगे भैया, इसमें एक लाख जन्म तक नहीं आएंगे, इसीलिए ये कह रहे हैं सनातन गोस्वामी, यह बात तो ठीक है, मेरे भक्त लोग यहाँ पर काम करते नहीं रहता हूँ, किंतु सब भाई न्याय के अनुसार में भक्त लोग यहाँ पर भगवान नाम कीर्तन करते हैं, भगवान की स्थिति यहाँ पर श्लोक में बतलाई गई, किंतु यह बात पूरी ठीक नहीं है, इसके लिए ठीक है उसके लिए, किंतु दर्शन की लालसा से एकमात्र तन मन वचन की शुद्धि भूल जाए, जैसे रामायण में भी देखा गया है, वो कौन कीर्तन कर रहे थे, सुतीक्षण जी, वो कठताली ले लिए हैं, उनके गुरु जी ने कहा जाए ये प्रभु जी आ रहे हैं आएंगे, और कीर्तन करते हुए रम रहे हैं, होश नहीं है शरीर का, बुद्ध नहीं है, तब तो भगवान आ गए, रामचंद्र जी पहुंच गए, ध्यान ही नहीं उनका भंग हो रहा है, तो अंदर से अपनी मूर्ति हटा दी, व्याकुल हो गए थ्रू की आंख करके खोल करके देख, अरे ये तो मनुष्य बांडी है, हमारे आराध्य में खिंचाएंगे, आपका कीर्तन करता है नाम के बाद खिंचाएंगे, जब आप वाल्मीकि की तरफ में नाम करेंगे, रोम रोम से नाम निकलने लग जाएगा,
दीमक आपके शरीर को खा जाएगा, हड्डी भी गल जाएगी और शरीर की सुध बुध नहीं रहेगी। आप तन्मय होकर के उनके लिए आप व्याकुल हो गए, कब मिलेंगे? उस समय भगवान आने, ऐसे नहीं। इसलिए कहते अत्यंत कातर हृदय से क्रंदन करते 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 उसके बिना काम नहीं चलेगा। हरि दर्शन की प्यासी अखिया सूरदास की, ठीक ठीक वैसा भाव आ जाएगा तो भगवान। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में स्कंद पुराण में एक उपाख्यान आता है भागवत का, गुंडकारी के भाई वो कर दे भागवत 7 दिन तक पाठ किया, एक एक गांठ एक एक गांठ में एक एक गांठ को आश्रय करके एक एक दिन तक गुंडकारी उसमें मन को द्वारा आवाहन करके उसमें भर दिया है। 7 दिनों के बाद में गांठ फट गई पूरी और धुंधकारी दिव्य शरीर धारण करके और बैकुंठ के लिए जाने के दूत आया और उसको चले गए। जब चले गए दिखा भाई और कोई नहीं, ना भक्ता गया ना श्रोता गया, बस अकेले गया। इसके बाद में उन्होंने उन दूतों से पूछा, हम लोगों ने क्या दोष किया, हम लोगों को नहीं ले गए और इसको ले गए, पापी को ले गए, जघन्य पापी, और हम लोग तो परमात्मा है, भागवत का पाठ कर रहे हैं, सुना रहे हैं और ये लोग श्रोता हैं। जिस तरह से सुनना चाहिए आप लोगों ने न तो सुना और न बदल किया, आप अपने उद्धार के लिए आपने भागवत पाठ नहीं किया, आप तो दूसरों को सुनाने के लिए आपने किया और लोगों ने सुना दिया, ये तो भागवत पाठ हो रहा सुनने के लिए, अकेले तो भगवान के लिए उद्देश्य तो होना चाहिए और उस उद्देश्य में व्यग्रता व्याकुलता तड़फन होनी चाहिए, तब तो होगा। आप लोगों को किसी के अंदर में ऐसी भावना नहीं। 7 दिन और सप्ताह और किया और ऐसा मन लगा करके अभिनिवेश किया कि कौन सोता है और कहाँ कोई है,